सुप्रभात। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय की ओर से दूर शिक्षण कार्यक्रम के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत है कक्षा 9वीं हेतु रसखान जी द्वारा रचित सवैये। इसमें 4 सवैयों के बारे में चर्चा की गई है। व्यापक विश्लेषण हेतु मैंने इस काव्यखंड को 4 भागों में विभाजित किया है। हर भाग में हम रसखान जी की सवैयों की क्रमवार रूप में व्याख्या विश्लेषण करेंगे। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष प्रथम सवैया। हिंदी साहित्य में भक्त कवियों का अपना विशेष स्थान है। उनमें भी कृष्ण भक्त कवियों की कविता बड़ी सहज, सरल, सुरीली और सजीव है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण कृष्ण का व्यक्तित्व, कृष्ण का चरित्र है। वे बांसुरी बजाते हैं, ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं, नटखट इतने कि गोप गोपियों को सताते हैं, परेशान करते हैं, माखन चुराते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, निर्मोही ऐसे कि छोड़कर एक बार चल दिए तो फिर पलट कर देखते नहीं, मनमोहन ऐसे, क्यों इनका नाम मनमोहन रखा गया, मनमोहन ऐसे कि लाख चाहने पर भी मन उन्हें भुला नहीं पाता। तभी तो गोपियाँ मन वचन कर्म से उनसे इतना जुड़ गई हैं कि कृष्ण के बिना रह ही नहीं पाती। तभी तो न जाने कितने भाव कवि हृदय उन पर मर मिटते हैं। यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों में कितनी विविधता है। भाषा प्रदेश का कोई भेद नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही उनके साथ समाहित हो गई है, पूरी सृष्टि उनमें समाहित है। देश प्रदेश भाषा का कोई अंतर नहीं है, सभी एकाकार हो गए हैं। यही कारण है कि कहीं बंगाल के जयदेव और चंडीदास उनके गुण गाते अघाते नहीं हैं, तो कहीं मिथिला के विद्यापति, कहीं गुजरात के नरसिंह मेहता, तो कहीं महाराष्ट्र के तुकाराम। सूरदास की बात तो अलग है, वे जन्मांध होते हुए भी कृष्ण के पूरे चरित्र को ऐसे देखते हैं, ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि विश्वास ही नहीं होता कि वे जन्मांध थे। तो कहीं राजरानी मीरा, जो अपना सब कुछ कृष्ण के लिए त्यागने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, और इन्हीं भक्त कवियों की श्रेणी में आता है नाम सैयद इब्राहिम जी का, जो कृष्ण के अनन्य भक्त बन जाते हैं। और सैयद इब्राहिम से रसखान कब रसखान हो जाते हैं इसका भान ही नहीं होता। कृष्ण भक्त कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर विट्ठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया। कृष्ण भक्ति में इतना तल्लीन थे कि श्रीनाथ मंदिर में ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि उसके बाद वे पूरी तरह से कृष्णमय हो गए और ब्रजभूमि में ही बस गए। इनकी मृत्यु सन 1628 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से प्रसिद्ध है।
इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं? रसखान कृष्ण के रंग में इस कदर रंग गए थे कि उन्होंने कृष्ण भक्ति को ही अपने काव्य का विषय बनाया। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह जड़ हो या चेतन, सब पर मुग्ध थे। उनके काव्य में समूची ब्रजभूमि के प्रति अनुराग प्रकट हुआ है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम पवित्र, निश्चल और निस्वार्थ है, जिसमें उनकी तन्मयता, भक्ति, भावुकता और तल्लीनता परिलक्षित होती है, दर्शनीय है। जिस प्रकार मीरा अपने प्रभु के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने हरि के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थी, उसी तरह रसखान भी कृष्ण के लिए, अपने प्रभु के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तभी तो वे कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के गवारा। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण भगवान से जब उनका साक्षात्कार हुआ, कृष्ण उनके अंतिम समय में कृष्ण भगवान ने साक्षात उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने कृष्ण के समक्ष, अपने प्रभु के समक्ष क्या भक्ति भाव प्रदर्शित किया, क्या कामना की, क्या इच्छा व्यक्त की। उन्होंने यही इच्छा व्यक्त की कि जब मैं मनुष्य रूप प्राप्त करूं, मनुष्य योनि प्राप्त करूं, तो कहां बसूं, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष यानी कि मनुष्य, बसों बसना रहना, ग्वारन ग्वालों के मध्य। कहां बस मेरो, कहते हैं कि जब मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो कहां बसूं, ब्रज में बसूं, ग्वालों के बीच बसूं। क्यों ब्रज में? क्योंकि वहां से कृष्ण का संबंध है, नाता जुड़ा हुआ है। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को देखते हैं। उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति उनका लगाव परिलक्षित होता है। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर ही जन्म लेना चाहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उससे कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। आगे क्या कहते हैं? जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यहाँ वे अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं कि यदि मेरा पशु के रूप में जन्म हो तो मैं कहाँ जन्म लूँ, गोकुल की गायों के साथ ही घूमो फिरो, नंद के गांवों के मझारन, मझारन मतलब बीच में, उसी के साथ चलो। लेकिन यहाँ असमर्थता क्या जाहिर कर रहे हैं? कहाँ बस मेरो वस, मेरा वस कहाँ? जब मैं पशु रूप में जन्म लूँगा तो मेरा वस कहाँ होगा? मतलब मैं अपनी स्वेच्छा से कहीं नहीं जा सकूँगा। मेरे गले में रस्सी डाल के कोई कहीं भी ले जा सकता है। फिर भी यदि मैं, इसीलिए कहते हैं कवि कि कहाँ बस मेरो, मेरा वस कहाँ चलेगा। फिर भी मेरी इच्छा है कि जब मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो कहाँ जन्म लूँ, वहीं पर नंद की धेनु, धेनु मतलब गाय, के बीच में ही चरूँ, वहीं पर रहूँ। और आगे अपनी इच्छा क्या जाहिर करते हैं कि अगर वो पत्थर भी बने अगर वे पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, मतलब अगर निर्जीव रूप भी मिले तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। यह आपको पता ही होगा कि इंद्र पुरंदर मतलब इंद्र जब कुपित हो गए, क्रोधित हो गए तो इतनी अधिक वर्षा करने लगे कि वहाँ बाढ़ सी नौबत आ गई, त्राहिमान मच गया। तब गोकुल के वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया छाता की तरह और ब्रजवासियों की रक्षा की। तो वे अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि अगर मैं पत्थर भी बनूं, पाहन पत्थर भी बनूं, तो किसका पत्थर बनूं? गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, गिरी यानी पर्वत। और फिर कवि क्या कहते हैं, जो खग हो तो, खग यानी कि पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो कहाँ क्या करूं, कहाँ रहना है मुझे? अगर मैं पक्षी भी बनूं तो वह यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। यमुना नदी के किनारे गोपियों के संग ग्वाल बालों के साथ कृष्ण लीलाएं करते हैं, और कदम का पेड़ उस पर तरह तरह के नाना प्रकार के खेल खेला करते हैं। तो वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब मैं पक्षी बनूं तो, क्योंकि उन्हें पता नहीं है मैं अगले जन्म में क्या बनूं, कुछ उन्हें आभास नहीं है, सारी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि यदि ये बनूं तो, यदि वो बनूं तो यदि पक्षी बनूं तो यमुना के तट पर कदम के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वो रहना ब्रज भूमि पर ही चाहते हैं। उन्होंने भगवान से यही कामना की है कि हर रूप में उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहे और प्रभु की कृपा बनी रहे। एक सच्चे भक्त का कितना सुंदर आत्म निवेदन है, वे चाहते हैं कि कृष्ण मेरी इच्छा को पूर्ण कर दें, उनके आत्मनिवेदन को स्वीकार कर लें। इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, अपने सानिध्य में मुझे ले लें, अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डालें। तो आपने देखा कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। वे कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए मनुष्य बनने पर ब्रज के ग्वाल बालों के बीच रहने की कामना करते हैं, पशु बनने पर नंद की गायों के बीच चरने की कामना करते हैं, और पत्थर बनने पर गोवर्धन पर्वत का भाग, और अंत में पक्षी रूप में कदम की डालों पर बसेरा बनाने की कामना करते हैं। ब्रज भाषा में कितनी सुंदर अभिव्यक्ति, और अंतिम पंक्ति जो है, जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कितना सजीव वर्णन है।